हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दीवा आर्यांश के बीच हुई उस घटना को पूरे 3 दिन बीत चुके थे जब आर्यांश ने पृथ्वी कपूर के बर्थडे पर सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी, और उसी रात गोइंका फैमिली की जिंदगी में एक नया और बड़ा तूफान आया था। ऐसा लग रहा था जैसे सबकी जिंदगी बिखर सी गई थी, और उन सबको काबू करने वाला एक ही शख्स था, और वो था आर्यांश कपूर। आर्यांश अभी भी न्यूयॉर्क में ही था। हाँ, ये बात अलग थी कि उस रात पृथ्वी से हुई बहस के बाद वो उनके घर पर रहने के बजाय एक लग्जूरियस सूट में रह रहा था। आर्यांश इस वक्त सार्थक के साथ कॉल पर जुड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के भाव थे। हाँ, सब कुछ उसी के प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर भी वो परेशान था। गोइंका फैमिली पर नज़र रखो, जो भी इन्वेस्टर्स हैं और मार्केट में उथल पुथल मची हुई है, एक बार उनके लिए सब कुछ हैंडल करो। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, आर्यांश ने बिना किसी भाव के कहा। हाँ ठीक है, लेकिन यही तो आप चाहते थे, अचानक आपका प्लान चेंज कैसे हो गया? सार्थक ने हैरानी से पूछा। हाँ मैं यही चाहता था, पर आर्यांश बोलते हुए रुक गया था। उसने सिर पकड़कर कहा, तुम सच में उनके घर पर नज़र बनाए हुए हो ना? तुम श्योर हो कि दीवा पिछले 3 दिनों में अपने घर पर एक बार भी नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? ये खबर अब तक सब जगह फैल चुकी है कि गोइंका फैमिली किन मुसीबतों से जूझ रही है, और कुछ न्यूज़ पोर्टल्स में उनके सुसाइड अटेम्प्ट तक की खबरें आ चुकी हैं। फिर वो लड़की गायब कैसे रह सकती है? ठीक है, परेशान होगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने माँ बाप की भी फिक्र ना हो। पिछली बार रक्षित ने भी उसका दिल तोड़ा था, पर उसने खुद को मजबूत बनाकर रखा सिर्फ अपने परिवार के लिए, और अब वो ऐसे गायब हो गई जैसे इस दुनिया में आई ही ना हो। एक पल के लिए कॉल पर बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। हाँ, आर्यांश की परेशानी का कारण यही था कि पिछले 3 दिनों में उसे दीवा का कुछ पता नहीं था। ना तो वो अपने परिवार से मिलने आई थी, और ना ही उस रात के बाद उसे किसी ने कहीं देखा था। सार्थक ने गहरी सांस ली और कहा, आप उनका दिल तोड़ चुके हो, और अब आपको उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर आप उनके लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं सर? मैं बेचैन नहीं हूँ, मैं बस उसका रोता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, उसकी तड़प देखना चाहता हूँ जो मैंने महसूस की थी, आर्यांश ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता नजर आ रहा है, आप उनके लिए तड़प रहे हो, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, सार्थक ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। आर्यांश जिस तरह शिद्दत से उसे ढूंढने के लिए पागल हो रहा था, उससे कुछ और ही जाहिर हो रहा था। आर्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछा है, मुझे दीवा गोइंका अपने सामने चाहिए। सार्थक ने जवाब में कहा, वो कहीं नहीं मिल रही है, मैंने पूरे न्यूयॉर्क और इंडिया में उसे ढूंढ लिया है, दूसरी जगह भी जाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उसकी फैमिली की हालत चल रही है, उसे उनके पास होना चाहिए। इन सब से मुझे एक ही अंदाज़ा हो रहा है, हो सकता है कि जो आपने उसकी फैमिली के लिए प्लान किया था वो दीवा ने सच कर लिया हो। कहीं वो मर उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यांश जोर से चिल्लाया, अपना मुंह बंद रखो, अपनी नाकामयाबी को उल्टे सीधे नाम देने की कोशिश मत करो। नाकामयाबी नहीं, सच कह रहा हूँ, वो कहीं भी नहीं मिल रही है सर। वैसे आप इस मामले में सौरभ बजाज से क्यों नहीं पूछते? वो अभी भी अपने न्यूयॉर्क वाले घर में है, हो सकता है दीवा उसके पास उसके घर में हो, क्योंकि पार्टी में वो उन्हीं के साथ आई थी। उसके बाद दोनों बाप बेटे भी गायब हैं, वो दोनों अब तक मुंबई नहीं आए हैं, सार्थक ने सुझाव दिया। आर्यांश ने आगे कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया था। वो गुस्से में तेज सांस ले रहा था, और वो गुस्सा किस वजह से था आर्यांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौरभ बजाज का नाम बीच में आते ही आर्यांश बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी लेकर सीधा उसके घर जा पहुंचा था। लगभग शाम का वक्त होने की वजह से सौरभ घर के गार्डन एरिया में बैठकर चाय पी रहा था, यही उसका रूटीन था। सौरभ के घर पर आते ही आर्यांश तेज कदमों से चलता हुआ सीधा गार्डन एरिया में पहुंचा। उसे देखते ही सौरभ के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल सही समय पर आए हो, आज ही मैंने चीन के कुछ पहाड़ी इलाकों से खास चाय मंगवाई थी जो आपके दिमाग को सुकून देती है, तुम ट्राई क्यों नहीं करते? कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो, सौरभ ने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा। वहीं आर्यांश के चेहरे के भाव सर्द थे, और वो उसी लहजे में बोला, दीवा कहाँ है? आर्यांश ने सीधे सीधे पूछा। मुझे कैसे पता होगा, कौन सा मैंने पार्टी में सबके सामने उसे अपनी रखेल साबित किया था, सौरभ ने बिना किसी भाव के कहा। जुबान संभाल कर बात कीजिए अंकल, यहाँ मॉम नहीं है जो आपको मुझसे बचा पाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गायब हो गए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, आर्यांश ने उसे धमकाते हुए कहा। क्या गलत कहा मैंने, उस दिन सब यही कह रहे थे, और खुद तुमने उसे ये टैग दिलवाया था, मैंने तो सुना है कुछ लोगों ने वीडियो भी शूट किया था, सोचो वो वायरल हो गए तो डॉक्टर गोइंका की क्या इज्जत रह जाएगी, सौरभ ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। आर्यांश गुस्से में आगे बढ़ा और सौरभ का गला पकड़ लिया था। वो उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीस कर बोला, इस तरह पहेलियों में बातें बनाना और मुझे धमकाना बंद कीजिए। मैं अपने पर आ गया तो आपको किसी भी लायक नहीं छोड़ूंगा। आपका बेटा कहाँ है? वही दीवा को उस पार्टी में लेकर गया था। प्रियंक के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है, उसका नंबर भी नहीं लग रहा है, सौरभ ने दबी आवाज में खांसते हुए कहा। आर्यांश के गला दबाने पर उसे बोलने में दिक्कत हो रही थी। आर्यांश ने सौरभ का गला तेजी से छोड़कर उसको दूर धकेल दिया था। वो वहां से जाने लगा तभी सौरभ ने पीछे से कहा, प्रियंक के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि उसकी आदत है, जब वो किसी के साथ पार्टी करने में बिजी हो जाता है तो उसे किसी चीज का होश नहीं रहता। तुम तो उसे अच्छे से जानते हो। रही बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ओ सॉरी, उस मिस्ट्रेस की, वो प्रियंक के साथ नहीं होगी। आर्यांश ने सौरभ की बात का पलटकर जवाब तक नहीं दिया था। वो जानता था कि सौरभ के साथ बहस करना बेकार है, क्योंकि अगर उसे दीवा के बारे में पता भी होगा तो वो उसे नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में प्रियंक सौरभ से अलग था। अगर वो प्रियंक से दीवा के बारे में पूछता तो वो उसे आराम से बता देता। आर्यांश ने जब सौरभ की बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया तो सौरभ उसके पीछे आते हुए बोला, वैसे तो वो लड़की तुमसे नफरत करने लगी होगी, लेकिन उसके माँ बाप के साथ तुमने जो भी किया उसके बाद तो वो अगर जिंदा भी होगी तो भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहेगी। तुम जिस तरह से डेस्परेट होकर उसे ढूंढ रहे हो और फिर भी वो नहीं मिली, तो इससे एक बात तय है कि वो इस दुनिया में रही ही नहीं। इस बार सौरभ की बात सुनकर आर्यांश रुक गया था और दीवा के मरने के ख्याल भर से उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम गया हो। उसे वैसा ही ख्याल आ रहा था जैसा उसने शहर को खोया था तब महसूस हुआ था। नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं मर सकती है। अभी उसे वो तड़प महसूस करनी है जो तब होती है जब कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाता है। वो एक बार फिर से मुझे तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकती है, आर्यांश ने कांपती आवाज में कहा।
इस बार वो सौरभ की तरफ पलटा, लेकिन उसके चेहरे के भाव बेहद सर्द थे। आर्यांश ने सौरभ के मुंह पर एक मुक्का मारा और चिल्लाकर कहा, तुम लोगों ने ही उसे कहीं पर छुपा कर रखा है और जानबूझकर उसके मरने का नाम लेकर मुझे तकलीफ पहुंचाने का सोच रहे हो। पिछली बार भी तुमने ही उनका एक्सीडेंट करवाया था, मैं अच्छे से जानता हूँ। अब तक मैं चुप था तो सिर्फ मॉम की वजह से, लेकिन मैं हमेशा शांत नहीं रहूंगा सौरभ बजाज। मैं तुमसे तुम्हारे किए का बदला जरूर लूंगा। आर्यांश के मारने की वजह से सौरभ की नाक से खून आने लगा था और वो उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगा। सौरभ ने सिक्योरिटी को भी बुलाया, लेकिन आर्यांश को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में काफी गंभीर माहौल था। दीवा इस वक्त आईसीयू के अंदर थी और उसकी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे थे। वहीं पास में प्रियंक खड़ा हुआ था। वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण था। दीवा को चेक करने के बाद डॉक्टर ने प्रियंक की तरफ देखा और ना में सिर हिला दिया था। इसी के साथ प्रियंक के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए थे। क्या कोई होप नहीं है? कुछ तो बोलिए डॉक्टर, पिछले 3 दिनों से आप यही बोल रहे हैं, इसे कब होश आएगा? इसे आखिर हुआ क्या है? प्रियंक ने मायूस स्वर में पूछा। एग्जैक्टली हमें भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। जैसा कि हमने आपको बताया था, इन्हें कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन हाँ, मेंटल स्ट्रेस इनके दिमाग पर हावी हो रहा है और शायद पेशेंट की जीने की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है, तभी वो खुद होश में नहीं आना चाहती है। मेडिकल टर्म में हम इसे टेम्परेरी कोमा का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ज्यादातर ये 1 हफ्ते से महीने भर के बीच की हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम के लिए पेशेंट टेम्परेरी स्लीप में चली जाए तो हम उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देते हैं या फिर घर वालों की इच्छा के अनुसार वेंटिलेटर पर रखते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस तरह के पेशेंट कभी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जैसा कि मिस कोइंका के साथ हो रहा है। डॉक्टर ने अपने अनुभव के हिसाब से एक लंबी चौड़ी थ्योरी बता दी थी, जो कि उन्होंने दीवा को एग्जामिन करके महसूस की थी। अब तो कोई चमत्कार ही इन्हें ठीक कर सकता है, डॉक्टर ने आगे जोड़ते हुए कहा। प्रियंक नम आंखों से दीवा की तरफ देख रहा था। जिस रात दीवा बेहोश हुई थी उसके बाद वो उसे अस्पताल में लेकर आया था, तब से ही उसे होश नहीं आया था। डॉक्टर का यही कहना था कि इमोशनल ट्रॉमा और स्ट्रेस उस पर इस कदर हावी हो गया है कि उसकी जीने की इच्छा पूरी तरह मर चुकी है। उसके शरीर ने भी उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। हाँ, शायद कोई चमत्कार ही दीवा को बचा सकता है, और मैं नहीं जानता वो चमत्कार क्या है, पर एक बात साफ है कि मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, प्रियंक ने भारी आवाज में कहा। हाँ, ऐसे में वो इंसान भी बहुत हेल्पफुल रहता है जिसकी वजह से सिचुएशन खराब हुई। इनका कोई प्यार करने वाला या अपना इन्हें ठीक करने में मदद कर सकता है। कई बार ऐसी सिचुएशन में भी ब्रेन तक इमोशनल सिग्नल पहुंच जाते हैं। जब आप इन्हें यहाँ लेकर आए थे तब ये किसी आर्यांश का नाम बड़बड़ा रही थी, तो आप उन्हें क्यों नहीं बुला लेते, डॉक्टर ने सुझाव दिया। आर्यांश का नाम सुनते ही प्रियंक के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे और उसने तुरंत ना में सिर हिला दिया था। डॉक्टर वहां से चले गए थे जबकि प्रियंक दीवा के पास में बैठ गया था। वहीं दीवा अंदर ही अंदर सच में बहुत कुछ महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक गहरी नींद में है और नींद में किसी ऐसी जगह पर खो गई है जहां उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। आसपास जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों के अलावा और कुछ नहीं था और दीवा दौड़े जा रही थी। एक बात अभी भी उसके दिमाग में घर कर गई थी और वो थी कि आर्यांश ने उसे छोड़ दिया था। उसे लगता था कि उसकी वजह से सहर की मौत हुई थी, वो सहर जिससे दीवा खुद बहुत प्यार करती थी। सहर, सहर कहाँ हो तुम? वो कह रहा है कि मुझे मरना चाहिए था, तो तुम मेरी जगह जिंदा हो जाओ, मैं मर जाती हूँ, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अब और नहीं जीना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे नज़र नहीं आ रही हो तुम, कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। दीवा चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ रही थी कि तभी अचानक वो किसी खाई में जाकर गिरी और जोर से चिल्लाई। दीवा को यही लगा कि वो मर चुकी है और यही उसका अंत है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। दीवा की आंखें आधी खुली हुई थी, अभी भी वो उस जंगल में थी जहां वो अकेली थी, लेकिन उन अधखुली आंखों से उसके सामने उसे वो नजर आ रही थी जिसकी तलाश में वो दौड़ रही थी। सहर, दीवा के मुंह से निकला और उसे अपने सामने देखकर शायद उसे अब थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने हमेशा यही सुना है कि जब आप मर जाते हैं तो आपको आपके अपने लेने आते हैं, तो तुम मुझे लेने आई हो ना सहर? सहर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और दीवा का हाथ पकड़कर जवाब में कहा, हाँ मैं तुम्हें लेने ही आई हूँ और तुम मेरे साथ चलो। दीवा ने हामी भरी और उसके हाथ को थाम लिया था। इसी के साथ उसने सुकून से अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अब उसे वो दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था और ना ही किसी को खोने का गम।